शान ने उसके ठीक से रुकने तक का इंतजार नहीं किया और गेट खोलकर गाड़ी से बाहर निकलते हुए गुस्से में लंबे लंबे डग भरते हुए एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। आरवी और अर्जुन ने अपनी बात खत्म की ही थी कि शान की गुस्से भरी तेज आवाज वहां गूंज उठी। क्या कर रही हो तुम यहां? अचानक आई शान की आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। पहले उन्होंने घबराई निगाहों से एक दूसरे को देखा कि कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया, फिर निगाहें शान की तरफ घुमा दी जो उनसे कुछ कदमों की दूरी पर ही खड़ा था। लोगों के ऑफिस जाने का वक्त था, इसलिए वहां गिनती के ही लोग मौजूद थे, पर अब उन सबकी निगाहें उनकी तरफ ही थीं। आरवी शान के सवाल पर कोई जवाब देती उससे पहले ही अर्जुन ने अपने पॉकेट से आरवी का फोन निकाला और उसकी तरफ पढ़ाते हुए शांत लहजे में बोला, लो तुम्हारा मोबाइल, और कल डैड ने जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, एंड आई प्रॉमिस वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अर्जुन ने बात ही पलट दी। आरवी पहले तो अचंभित सी उसे देखती रही, फिर उसने उसकी बात का मतलब समझते हुए तुरंत ही सिर हिला दिया और अपना फोन लेकर वहां से उठते हुए बोली, थैंक यू ब। वो भैया कहने वाली थी, पर शान की मौजूदगी के वजह से उसके शब्द उसके गले में अटक गए। उसका बीच में ही यूं चुप हो जाना जाने अनजाने अर्जुन को तकलीफ दे गया था। पहले तो आरवी थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, थैंक यू भैया। अर्जुन के लबों पर मुस्कान की रेखा उभर आई। वहीं शान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कस लिया और दनदनाते हुए उनके पास चला आया। उसने नफरत भरी निगाहों से अर्जुन को घूरा और आरवी की तरफ निगाहें घुमाते हुए दांत पीसते हुए बोला, किससे पूछकर तुम यहां इससे मिलने आई हो? मैं आपकी या किसी की गुलाम नहीं जो हर काम पूछकर करूं। आजाद हूं मैं अपने मन की करने के लिए। वैसे भी आपको नफरत ठाकुर साहब से है, तो उनसे नहीं मिलने आई मैं। मैं अपने भैया से मिलने आई हूं, जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि उन्हें मेरी ही तरह उस गुनाह की सजा मिल रही है जो उन्होंने किया ही नहीं। इसलिए आप मुझे अपने भैया से मिलने से रोक नहीं सकते। फिर मैं आई भी काम से ही थी, देखा तो होगा आपने, फोन लेने आई थी अपना। आरवी ने बिना घबराए उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए जवाब दिया। उसका कॉन्फिडेंस से भरा जवाब सुनकर शान की भौहें तन गई। उसने गुस्से में जबड़े बीचते हुए कहा, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, ये हिम्मत अपने भाई से मिली होगी ना? पर स्वीटहार्ट, मुझे तुम्हारी हिम्मत को तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। शान के लबों पर शैतानी मुस्कान खिल गई। आरवी सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी थी। शान ने आगे बढ़कर उसकी बांह को कसके पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि आरवी के मुंह से हल्की सिसकी निकल गई। वो उससे अपनी बांह छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अर्जुन तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया और शान की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, शान आरवी को छोड़ दे, दूर रह तू हमारे पर्सनल मैटर से, यह हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। शान की घूरती निगाहें उसकी तरफ घूम चुकी थीं। उसने आंखों से ही उसे वार्न किया, फिर भी अर्जुन आगे बढ़ने लगा, पर आरवी पर नजर पड़ते ही उसके कदम रुक गए, क्योंकि आरवी ने इनकार में सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अर्जुन ने बेबसी भरी नजरों से उसे देखा तो आरवी दर्द में भी हौले से मुस्कुरा दी। शायद वो उसे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो ठीक है। अर्जुन को वार्निंग देने के बाद उसकी निगाहें आरवी की तरफ घूम गईं। उसको छूटने के लिए यूं छटपटाते देखकर उसके लबों पर कुटिल मुस्कान फैल गई। शान ने आरवी की बांह पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आरवी उसके सीने से टकरा गई। उसने अपनी दोनों हथेलियों को उसके सीने पर टिकाते हुए उससे दूरी बनानी चाही, पर शान ने उसकी पतली कमर पर अपनी बांह कसते हुए उसे अपने और करीब खींच लिया और उन दूरियों को भी खत्म कर दिया। आरवी की सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। वो अब भी उसके कैद से आजाद होने के लिए कसमसा रही थी। शान ने उसके चेहरे पर अटखेलियां करती घुंघलीली लटों को अपनी उंगलियों में फंसाकर कान के पीछे खोंसते हुए कहा, लगता है ये नजदीकियां तुम्हें कुछ पसंद नहीं आईं। छूटना चाहती हो मुझसे, पर अफसोस स्वीटहार्ट कि तुम चाहकर भी मेरे कैद से आजाद नहीं हो सकती। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैं ऐसा नहीं चाहता। अपने प्यारे भैया से मिलने आई थी ना तुम, अब तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारे करीब जाऊंगा, जरा उसे भी तो पता चले कि कितना प्यार करता हूं मैं उसकी बहन से। शान की आंखें चमक उठी। उसने अपनी बात खत्म की और उसकी गर्दन पर अपनी हथेली रखते हुए उसके चेहरे को अपने करीब करने लगा और धीरे धीरे खुद भी उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। उसकी निगाहें आरवी के गुलाब के पंखुड़ी जैसे कोमल लाल लबों पर टिकी हुई थीं। आरवी उसके इरादों को भांप गई थी और यही वजह थी कि उसकी धड़कनें घबराहट के मारे जोरों से धड़क रही थीं, सांसें थम सी गई थीं। एक बार फिर शान अपनी हरकत से उसको सबके और अर्जुन के सामने ह्यूमिलिएट कर रहा था। आरवी की आंखों में बेबसी के आंसू भर गए। चेहरे पर अजीब सा दर्द और सूनापन नजर आने लगा। उसकी भीगी निगाहें शान के चेहरे पर टिकी थीं और डर से उसके लब कांप रहे थे। शान जैसे ही उसके लबों को चूमने के लिए आगे बढ़ा, आरवी की आंखों से आजाद हुआ आंसू की एक बूंद शान की बांह पर आ गिरी। इसके साथ ही शान रुक गया और निगाहें आरवी के चेहरे की तरफ उठ गईं। आरवी ने उसे रोका नहीं, पर उसके दर्द से सने चेहरे और आंसुओं से लबालब भरी आंखों ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। इस बार छोड़ रहा हूं, पर याद रहे अगर अगली बार मेरी बात को काटकर अपने भाई या बाप से मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि मेरे खिलाफ जाने से तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तो आगे से ध्यान रहे, जितना कहा जाए उतना ही सुनो और वही करो जिसकी इजाजत है। शान ने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए उसको धमकी दी, फिर झटके से उसे खुद से दूर कर दिया, पर अब भी उसने आरवी की बांह पकड़ी हुई थी। शान ने अब सख्त नजरों से अर्जुन को घूरा। मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ कि दूर रह मेरी वाइफ से। अगर अब भी तू या तेरा बाप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और मेरे वाइफ से दोबारा मिलने की कोशिश भी की तो उसकी कीमत तेरी प्यारी बहन को चुकानी होगी और शायद वो तो चाहता नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि दूर रहो तुम दोनों बाप बेटे मेरे वाइफ से। शान ने अर्जुन को धमकी दी, फिर आरवी की बांह पकड़े उसे लगभग खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगा। आरवी ने पलटकर परेशान निगाहों से अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने फोन की तरफ इशारा कर दिया और हौले से मुस्कुरा दिया, हालांकि उस मुस्कान के पीछे उसकी बेबसी छुपी थी। उसका इशारा समझते हुए आरवी ने अपने फोन को देखा तो कवर के पीछे एक पेपर रखा हुआ था। आरवी ने एक बार फिर पलटकर उसे देखा और हौले से मुस्कुरा दी। शायद अपनी मुस्कुराहट के जरिए वो उसे ये बता रही थी कि वो ठीक है। अर्जुन की आंखों के सामने से शान आरवी को लेकर वहां से चला गया और वो सुनी निगाहों से अपनी बहन को खुद से दूर जाते हुए देखता रहा। फिर उसने खुद को संभाला और बिल पे करने के बाद किसी को फोन लगाते हुए वहां से बाहर निकल गया। आरवी और शान दोनों गाड़ी में बैठे थे और उनके बीच गहरी खामोशी छाई हुई थी। शान का चेहरा अब भी गुस्से से तमतमाया हुआ था जबकि आरवी का चेहरा एकदम मायूस लग रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी मल्होत्रा हाउस के बाहर रुकी और आज फिर शान उसकी बांह पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर लेकर जाने लगा। आरवी ने ना तो कुछ कहा और ना ही उसे रोकने की कोशिश ही की। हॉल में बैठे सुभाष और अर्पिता जी ने जब ये नजारा देखा तो दोनों कुछ हैरान से हो गए। उन्होंने पहले एक दूसरे को परेशान निगाहों से देखा, फिर शान को देखने लगे। शान, ये क्या बदतमीजी है, आप इस तरह आरवी को खींचते हुए क्यों लेकर आए हैं?
शान के कानों में जैसे ही अर्पिता जी की गुस्से भरी आवाज पड़ी, उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसने पलटकर उन्हें देखा और अपने गुस्से को दबाते हुए बिना किसी भाव के बोला, बड़ी माँ, ये हम दोनों के बीच का मामला है, तो प्लीज आप बीच में कुछ मत बोलिए। टू बी कंटिन्यूड।